કુબેરાત્મા જો બધા મુક્તઈ વજાદવત ભયા મોચી તો ભક્તિ ના જો કૃત ઉચ્ચ કુબેરાત્મા જો બધા
સપ્તમઃ શ્લોક અનુવાદ. હે દામોદર, જિસ પ્રકાર આપને અપને દામોદર રૂપ સે માતા યશોદા દ્વારા ઓખલ મેં બંધે રહેકર ભી નલ કુબેર ઔર મનીગ્રીવ નામક કુબેર કે દોનો પુત્રો કા નારદ કે શાપ સે પ્રાપ્ત વૃક્ષ યોનિ સે ઉદ્ધાર કર ઉને પરમ પ્રયોજન રૂપ અપની ભક્તિ પ્રદાન કી થી, ઉસી પ્રકાર મુજે ભી આપ અપની પ્રેમ ભક્તિ પ્રદાન કીજીએ. યહી મેરા એકમાત્ર આગ્રહ હૈ. કિસી ભી પ્રકાર અન્ય પ્રકાર કે મોક્ષ કે લીએ મેરા તનિક ભી આગ્રહ નહીં હૈ. દિગ્દર્શની ટીકા કા ભાવાનુવાદ. પિછલે શ્લોક મેં પ્રેમ વિશેષ કે કારણ પરમ ઉત્કંઠા કે સાથ સાક્ષાત દર્શન કી પ્રાર્થના સત્યવ્રત મુનિ ને કી. તદંતર હી સદ્ય ઉત્પન્ન પ્રેમ ભક્તિ વિશેષ કે કારણ સાક્ષાત દર્શન કો પરમ દુર્લભ માનતે હુએ ઔર પ્રેમ ભક્તિ કો હી ઇસ વિષય મેં પરમ ઉપાય જાનકર અથવા એક બાર દર્શન હોને પર મન કી અતૃપ્તિ ઔર ઉસકે બાદ હોને વાલે વિરહ કી આશંકા કર સદા હી ઉનકો વશ મેં કરને કે લીએ પ્રેમ ભક્તિ કો હી પરમ ઉપાય જાનકર પુનઃ મુજ પરમ અપરાધી કો ये कैसे संभव है इसकी आशंका कर. परंतु श्री भगवद वात्सल्य की महिमा से असंभव भी सभी संभव हो सकते हैं यह निश्चय कर मोक्ष त्याग पूर्वक प्रेम भक्ति की ही प्रार्थना कर रहे हैं. यशोदा द्वारा पार्श्व समूह द्वारा उखल में श्रृंखलित श्री विग्रह द्वारा ही दोनों कुबेर के पुत्र श्री नारद के शाप और संसार से मुक्त कर दिए गए. ये दोनों पेड़ों के मध्य स्वयं प्रवेश के द्वारा परम सुंदर लीला विशिष्ट भगवान के साक्षात दर्शन स्पर्शन आदि भी सूचित हो रहे हैं. केवल उन्हें मुक्त ही नहीं किया बल्कि परम भक्ति भी उन्हें दी गई जो भक्ति भाजो पद द्वारा सूचित होता है. यहाँ भक्ति भाग का अर्थ है भक्ति को ही परम साध्य के रूप में आश्रय करने वाला, किसी भी प्रकार से उसे नहीं त्यागने वाला. इस प्रकार भक्ति भाजव पद द्वारा ये कहना चाहते हैं कि उन्हें प्रेम भक्ति दी गई. श्रीमद् भागवत में श्री भगवान की भी ऐसी उक्ति है. सजातो मई भावो वामिप्सितः परमो भवः. इसका अर्थ इस प्रकार है मुझ में तुम दोनों का उपेक्षित परम भाव अर्थात प्रेम भलीभांति उत्पन्न हुआ है जो अभव है अर्थात यह वह भाव है जिसे भव अर्थात पुनर्जन्म या संसार दुख नहीं होता है. हे दामोदर, जैसे कुबेर पुत्रों को प्रेम भक्ति दी गई वैसे ही वह भक्ति मुझे भी प्रबल रूप में दें जो एकमात्र आपके चरण कमलों का आश्रय करने वाली है अथवा यह सुंदर रूप ही जिसका विशेष है. प्रश्न, इस विषय में तुम्हारा आग्रह क्यों है? कुबेर पुत्रों की तरह मोक्ष भी ग्रहण करो अन्यथा जन्म मरण आदि रूप संसार की प्राप्ति हो सकती है. उत्तर, उस प्रेम भक्ति में ही मेरा आग्रह है, मोक्ष में मेरा आग्रह नहीं है. इसका अर्थ यह है कि प्रेम भक्ति के द्वारा यदि संसार का ध्वंस होता है तो हो और यदि नहीं होता है तो ना हो, इस विषय में मेरी उपेक्षा नहीं है. गूढ़ भाव यह है कि यदि हाथ में चिंतामणि हो तो सब कुछ स्वयं ही सिद्ध होगा, फिर किसी एक तुच्छ द्रव्य के ग्रहण से क्या लाभ. अथवा इस प्रसंग का दूसरा अर्थ इस प्रकार है. हे दामोदर, आप निज विषयक प्रेम भक्ति प्रदान करें. इस प्रकार पाश से बंधा हुआ उदर है जिनका, उससे संबंधित प्रेम भक्ति की प्रार्थना द्वारा नित्य काल के लिए पाश बंध के आग्रह की आशंका कर मुनि कह रहे हैं क्या पाशबंद से आपके मोचन में मेरा आग्रह नहीं है? काकुर स्वर से कह रहे हैं, अवश्य है, किंतु इस स्वरूप में ही स्वविषय का असाधारणी प्रेम भक्ति प्रदान करें, अथवा इस वृंदावन में प्रेम भक्ति प्रदान करें, ऐसा भी अन्वय हो सकता है। यह भी अनुमान करना चाहिए कि इसके द्वारा सदा वृंदावन में निवासी की भी प्रार्थना की गई है, क्योंकि वृंदावन में ही प्रेम भक्ति के सुख विशेष की आविर्भावता है, वही प्रादुर्भाव विशेष है, साक्षात दर्शन विशेष कारकता है, तथा वही वृंदावन विहारी भगवत हृदय विशेष है, अन्य अर्थ पूर्वत ही हैं। इति श्री दामोदर अष्टक के सप्तम श्लोक की श्रील सनातन गोस्वामी कृत दिग्दर्शनी टीका का भावानुवाद समाप्त। दिग्दर्शनी वृत्ति। सत्यवत मुनि अब द्रवित चित से कीर्तन कर रहे हैं और कीर्तन के माध्यम से बाल गोपाल की हृदय में स्फूर्ति हुई। स्फूर्ति में मानो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे मुनि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो कुछ मांगना चाहते हो वह मांग लो। इस पर मुनि कहते हैं कि आप स्वयं बंधन में बंधे होने पर भी कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव को जैसा भक्ति का भाजन बनाया, उन्हें प्रेम भक्ति प्रदान की, वैसे ही मुझे भी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। कुबेर के दोनों पुत्र धन के मद में मत थे। मद चार प्रकार का होता है, प्रथम रूप का, द्वितीय विद्या का, तृतीय उच्च कुल का, चतुर्थ धन ऐश्वर्य का। साधु का अभिशाप एवं आशीर्वाद एक जैसा ही होता है। हम समझ नहीं पाते हैं, उनके आशीर्वाद और अभिशाप दोनों में ही कल्याण है। नारद जी ने कुबेर के पुत्रों को अभिशाप दिया कि तुम धन के मद में मत होकर वृक्षों की भांति जड़ होकर कार्य कर रहे हो, जाओ वृक्ष हो जाओ। नारद जी के कहने के साथ ही साथ ये दोनों वृक्ष की भांति जड़ होने लगे। दोनों नारद जी के श्री चरणों में गिरकर अपने उद्धार का उपाय पूछने लगे। नारद जी ने कहा, देखो, द्वापर युग के अंत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोकुल में अवतार लेंगे, वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। ऐसा कहकर नारद जी तो चले गए। तत्पश्चात इन दोनों ने नंद भवन के पीछे युगल अर्जुन वृक्ष के रूप में जन्म लिया। मैया अपने लाला को बांधकर दधी मंथन के लिए चली गई। तब इन्हें भी अपने भक्त श्री नारद जी के अभिशाप का स्मरण हो आया। खेल के बहाने उनका उद्धार किया। खेलते खेलते दोनों वृक्षों के बीच में ओखल आड़ी फंस गई। श्री श्याम सुंदर ने ओखल को जोर से खींचा, जिससे दोनों अर्जुन वृक्ष भीषण शब्द करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। सहसा उन वृक्षों से दो देव पुरुष निकले। उन्होंने श्री कृष्ण की परिक्रमा एवं स्तव स्तुति की। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेम भक्ति का वरदान दिया। अप्रखंड ब्रज में मधुकंठ और स्निग्धकंठ नामक श्री कृष्ण लीला कथा वाचक होकर वहां नंद भवन में कृष्ण कथा सुनाने लगे। यह प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त होती है, इस विषय में श्री रूप गोस्वामी पाद श्री भक्ति स्वामी सिंधु में बतला रहे हैं। आदो श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति ही स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथ असक्ति ततो भावस्ततः प्रेम अबोध्य जन्ति साधका नाम्यम प्रेमनः प्रादुर्भावे भवेत क्रमः। श्री भक्ति स्वामी सिंधु 1, 4, 15 और 16। प्रेम भक्ति के बहुत से क्रम हैं, उनमें से शास्त्रों में वर्णित प्रसिद्ध क्रम का ही वर्णन यहाँ किया जा रहा है। भगवत विमुख जीव अनादिकाल से अपार संसार सागर के अनंत प्रवाह में पतित होकर इधर उधर भ्रमण कर रहा है। भगवान की विशेष कृपा से जिस समय जीव का संसार क्षय होने का समय उपस्थित होता है, उस समय उसको भगवत भक्तों का संग प्राप्त होता है। तब साधु संग में महत्पुरुषों के श्री मुख से भक्त, भक्ति और भगवान, इन तीनों का महात्म्य श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भक्ति मूलक सुकृति के द्वारा परमार्थिक श्रद्धा उत्पन्न होती है। शास्त्र वचनों में विश्वास और हरि कथा श्रवण में अभिलाषा होना श्रद्धा का लक्षण है। श्रद्धा उदय के पश्चात साधु संग तदंतर भजन क्रिया आरंभ होती है, साथ ही साथ अनर्थ निवृत्ति भी आरंभ हो जाती है। तत्पश्चात भजन में निष्ठा और तत्पश्चात भजन तथा भजनीय वस्तु में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो परिपक्व होने पर भाव दशा में परिवर्तित हो जाती है। तदंतर प्रेमोदय होता है। साधकों के चित्त में प्रेम के आविर्भाव का यही क्रम है। सत्यवत मुनि की प्रार्थना सुनकर मानो श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुनि, तुम संसार के दुखों से आत्यंतिकी निवृत्ति रूप मोक्ष ग्रहण करो। तो मुनि कहते हैं, हे प्रभु, चाहे मुझे संसार में कितने भी कष्ट मिले, अपने संस्कार के अनुसार नरक में अथवा किसी भी योनि में क्यों ना जाना पड़े, इसे मुझे चिंता नहीं। किंतु आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मैं जहाँ भी जिस योनि में रहूँ, केवल आपके भक्तों का संग सदैव बना रहे। ऐसी प्रार्थना श्रीमद् भागवत में वितरसुर ने भी की है। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः सकर्मभिः तन मायाया आत्म मजधार गेश असक्त चित्तस्य ननात भूयत्। श्रीमद् भागवतम 6:11-27। प्रभो, मैं मुक्ति नहीं चाहता। मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं। परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, जिस जिस योनि में जन्म लूँ, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्तों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। स्वामिन, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देह घे और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी भी किसी प्रकार का भी संबंध ना हो। यही हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं, लोभ किसी भी अवस्था में हो सकता है। जिसके हृदय में यह रागुणों का भक्ति उदित होती है, वह जगत का पूज्य बन जाता है। जगत की तो बात ही क्या, श्री कृष्ण जो अजीत हैं, उन्हें भी अपनी प्रेम भक्ति के माध्यम से वशीभूत कर लेता है। हे प्रभु, आप मैया के प्रेम रज्जु से बंधे हुए हैं, उसी बंधन वाले रूप से सदा मेरे हृदय में विराजमान रहें। इति श्री दामोदर अष्टक के सप्तम श्लोक की दिग्दर्शनी वृत्ति समाप्त।